पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों।
पवित्रता के हे मंत्र दाता, शांति। आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी शकु दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। इंद्रदेव भी बाहर से खूब स्वागत कर रहे हैं आप सभी का। इतना स्वागत कि आपके कार्यक्रम का ही परिवर्तन कर डाला। तो जहां तक शकु दीदी के परिचय की बात है, तो आप तो उनकी ही बगिया के फूल हैं, घाटकोपर से ही। और सुबह भी हमारे मधुबन निवासियों की रिक्वेस्ट पर अपने ही मुखारविंद से अपना परिचय दिया है, तो इसलिए मैं अधिक न कहकर इतना जरूर कहूंगी, जो अपने जीवन से पवित्रता की खुशबू बिखेर रहे हैं, वो पवित्रता के विषय पर प्रकाश डालेंगे। अध्यात्म के डगर पर चलते जिनको वर्षों बीते हैं, इस अध्यात्म डगर पर बहुत सारे अनुभव किए हैं आपने, आप अनुभव की खान है, तो अपने अनुभव भी हम सब के बीच में अवश्य साझा करेंगे। आदरणीय शकु दीदी जी।
ओम शांति। सभी ओके हैं? चलें सैर पर अभी अपने मंजिल की ओर। हाँ, तो हमारी मंजिल की शुरुआत भी पवित्रता है और हमारे मंजिल की समाप्ति भी पवित्रता है, राइट? क्यों? हम जब ही परम धाम से नीचे उतरी तो एकदम प्योर पवित्र आत्मा उतरी। चाहे हम सत्युग में उतरे, त्रेता में उतरे, द्वापर में उतरे, कलयुग में उतरे, जब भी उतरे तो कैसे उतरती है आत्मा? शुद्ध पवित्र। अच्छा, फिर जब वो अंत में अभी जाती है, जब सब आत्माएं मच्छरों सदृश अभी जाएगी, तो कैसे बन के जाएगी? शुद्ध पवित्र, वो भी कंप्लीट पवित्र। ऐसे नहीं आधा पवित्र होगी आधा नहीं होगी तो चलेगा बाबा को। परम धाम के गेट पर वही आत्मा जा सकती है जो यहां शुद्ध पवित्र बन जाती है, ये समझ के रखो। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का स्वरूप पवित्रता है। बाबा ने बताया जैसे सात गुण हैं आत्मा के, कि आत्मा ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वैसे आत्मा का निजी गुण है कि वो पवित्रता स्वरूप है, क्योंकि वो पवित्रता के सागर की संतान है। शिव बाबा जो पवित्रता के सागर हैं, उनके हम बच्चे हैं। बाबा ने हमको सत्युग में भेजा, शुद्ध पवित्र दुनिया में। हमने चक्कर लगाया, घूमे फिरे, सुख भोगा, धीरे 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 गड़बड़ करना शुरू किया। किया ना कि नहीं किया? किया। किसने गड़बड़ किया? बोलो, गर्व से बोलो, हमने किया। इसमें क्या शर्माने का? किसने गड़बड़ किया? हमने किया। भले ड्रामा बना हुआ है, लेकिन ड्रामा में यही बना हुआ है ना कि हम गड़बड़ करें। तो द्वापर युग से हमारे अंदर विकार आने शुरू हो गए, देहभान में आ गए हम। फिर धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन्होंने प्रवेश करना शुरू किया, भूतों ने। अच्छा, फिर ये केवल पांच विकार नहीं, एक एक विकार की ज्वाइंट फैमिली है, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है, बाल बच्चे पोतरे धोतरे सब है उनके। कभी आप लोग विचार सागर मंथन करो इस बात पर। आज बाबा ने बोला ना मुरली में कि विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो एक एक विकार के ऊपर मंथन करो कि उनका परिवार में क्या क्या है, कौन कौन है। अर्थात एक एक विकार के अंश वंश बहुत है, वो कौन है, और मेरे अंदर उनके अंश वंश अभी तक पड़े तो नहीं है, मेरे घर में बैठे तो नहीं है। मैंने अंश वंश सहित उनको विदाई दिया, प्रस्थान हुए, छुट्टी दिया मैंने उनको, ये चेक करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा के जब हम बच्चे बने तो सर्वप्रथम बाबा ने यही आज्ञा की बच्चा बनने के बाद कि बच्चे बी होली एंड बी राजयोगी। जब तक होली नहीं तब तक राजयोगी नहीं, योग लगेगा ही नहीं। आज अज्ञान काल में कहते मन प्रभु में नहीं लगता, घोड़े की तरह दौड़ता है भागता है। क्यों क्यों नहीं लगता? उसका कारण ही ये है, न हम उनको पहचानते हैं, जो हम उनको याद कर सके न हमारी आत्मा होली है, पतित आत्मा। तो इसीलिए बाबा ने पहला फरमान किया कि बच्चे पवित्र बनो योगी बनो। वहां से हमारी ब्राह्मण जीवन उसकी शुरुआत होती है। कोर्स करने के बाद जब हम बाबा के बन जाते हैं, बाबा को समझ लिया पहचान लिया, हमने संकल्प किया, तो बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बना देते, एक नया जन्म संगम युग का। क्योंकि ब्राह्मण माना पवित्र, उनको ही ब्राह्मण कहा जाता। इसीलिए बाबा कहते आजकल के जो दुनिया में कुकवंशावली ब्राह्मण है वो तो कोई धारणा नहीं करते। तो बाबा ने हम बच्चों को कर्म धर्म दोनों से ब्राह्मण बनाया, केवल जाति से नहीं कर्म से भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बनाकर ब्रह्मा का बच्चा बनकर हमको बाबा ने कहा बच्चे काम विकार महाशत्रु है। और हम बच्चों ने भी अनुभव समझ करके इस बात को बाबा से प्रतिज्ञा की कि बाबा हम आज जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। किया ना सभी ने? या कोई ऐसा भी बैठा है जिसने ये भी प्रतिज्ञा नहीं की है? कोई नहीं, क्योंकि वो तो इस भूमि पर आ नहीं सकता, बाबा की पवित्र भूमि पर। ठीक है, तो वो हमने बाबा से प्रतिज्ञा की। फिर दूसरी प्रतिज्ञा बाबा ने कराई, खान पान की कराई। अब पहली जो हमने प्रतिज्ञा बाबा से की, तो ब्रह्मचर्य का पालन तो हमने शुरू कर दिया कि शिव बाबा के हम बच्चे पति पत्नी आपस में भाई भाई हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम आपस में भाई बहन हैं। ये बाबा ने रिश्ता जोड़ा पवित्र रहने के लिए। फिर आगे बाबा बढ़ाते गए, क्योंकि ये तो हमने एक पवित्रता का संकल्प कर लिया, लेकिन आत्मा हमारी 63 जन्मों से पतित है। आत्मा के ऊपर 63 जन्मों के पापों की गठरियां हैं, बोझ है, उसको तो उतारना पड़ेगा। तो फिर बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ाते जाते, फिर बाबा कहते, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। ये दूसरी बात आ गई, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता चाहिए। साकार मुरली के अंदर बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे मन में विकल्प आएगा, मन में गंदा विचार आ सकता है, व्यर्थ विचार आ सकता है, कर्म में नहीं लाना। अगर कर्म में लाया तो सजा के भागी बनेंगे, विकर्म बनेगा, पाप हो जाएगा। लेकिन आगे जाते, जैसे पढ़ाई में शुरू शुरू में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो पहले इजी इजी थोड़ी पढ़ाई होती है, फिर बुद्धि खुलती जाती है, समझ शक्ति बढ़ती है, तो पढ़ाई गुहिया टफ होती जाती है। तो अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दूसरा नियम बताया समय के प्रमाण के, बच्चे अभी मनसा में भी विकल्प, पाप का विचार, गंदा विचार नहीं चलेगा। समय बदल गया, अब अगर मनसा में भी आया, भले कर्म में नहीं लाया, तो भी पाप के भागी है, उसकी भी सजा मिलनी है और मिलती भी है। एकदम कॉमन एग्जाम्पल है, सब भी उसमें अनुभवी हैं। छोटा सा कोई एक व्यर्थ संकल्प किसी के प्रति आया आपको, आपका एक सेकंड में खुशी गायब हो जाती, चेहरा बदल जाएगा, गुस्सा आएगा उस आत्मा के प्रति, घृणा नफरत, योग टूट जाएगा। आप ऐसे योग में बैठेंगे, मान लो 10 मिनट पहले किसी से कुछ ऐसा अनबन हुआ आपका, कोई बात में कोई ने कुछ बोल दिया किया, आप योग में बैठो, योग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। व्यर्थ संकल्प की दुनिया स्टार्ट हो जाती है बनना। तो छोटा सा संकल्प भी हमारा प्रभु से योग तोड़ रहा है। तो अगर हमने और आगे बढ़कर कुछ ऐसा विकारी संकल्प किया, तो वो तो पाप बन जाता है, चलेगा ही नहीं, नॉट अलाउड अभी। इसलिए साकार मुरली पढ़ करके निश्चिंत मत होना कि मेरे मन में आया, कर्म में तो नहीं आया ना, वो तो हमारी पढ़ाई रिवाइज कोर्स की है, लेकिन अब भी जो बाप दादा ने वो भी बहुत बरस हो गए, ये बात बता के भी कि अगर मन में भी हमारे गंदे विचार, विकारी विचार, या फिर बाबा तो कहते व्यर्थ भी, वो भी अपवित्रता है। सीधे शब्दों में बाबा ने बताया, उसको कहेंगे अपवित्रता। अगर मैंने किसी के प्रति नेगेटिव सोचा, मेरे अंदर अपवित्रता ने प्रवेश किया, मैली हो रही आत्मा शुरू हो रही, मैली होना स्वच्छ से फिर से, यहां तक बाबा ने कहा है कि मन के अंदर बिल्कुल व्यर्थ और विकल्प नहीं चलेगा। आज ही बाबा ने कहा मुरली में, 33 करोड़ त्रेता युग के अंत तक की आत्माएं, पांचवी थॉनर कितनी हो रही है, पहले सिर्फ 8, जो नाखून जितनी रिंचक मात्र भी सजा नहीं खाती हैं, अष्टरत्न, उसके बाद माला बनती 108 की। जिसको एक बार कहा कि थोड़ी सी आंख देखनी पड़ती है, जैसे कोई बच्चे को आंख दिखाते हैं ना माता पिता, ऐसे वो बराबर नहीं करते तो दिख दिया, समझ गए मां बाप ने आंख दिखा दिया, हमको नहीं करने का है, समझदार होता है तो वो पॉसिबल है उनके लिए, पीछे का क्या कहें। तो इसलिए पहला ही जो विकार है उसके अंश वंश हमारे में कितने पड़े हुए हैं, कहां भी हमारी आसक्ति गई, ऐसी दृष्टि गई, हमारी ब्राह्मणों की भाषा में आज के समय में उसको अपवित्रता कही जाएगी सीधे शब्दों में, क्योंकि बाबा में बहुत ऊंची स्टेज पर ले जाना चाहते हैं। कलह युग में भी पवित्रता की कितनी वैल्यू है, बाबा कहते ना साधु सन्यासी सर्व ब्रह्मचर्य का केवल पालन करते हैं, थोड़ा खान पान की शुद्धि होती है, तो अज्ञानी घर गृहस्थी विकारी उनके पांव पड़ते हैं, झुकते हैं उसके आगे। जैसे बाबा कुमारी का भी विचार बताते संकल्प कि कैसे कुमारी माना पवित्र, उनको उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी हुई है तो उनको देवी मानते हैं, उनके भी पांव पड़ते हैं। आज मंदिर में भगत जाते, आदर्श भगत, तो कितना ध्यान रखते हैं पत्थर की मूर्तियों के आगे जाने के लिए, सबसे पहले वो जूते बाहर निकालेंगे, जूता पहन के नहीं जाएंगे, फिर मुंह धुलाई किया हुआ हो, कुछ खाया पिया हुआ नहीं, ऐसे नहीं खाते खाते भगवान के मंदिर में चढ़ गए, मुंह साफ करते हैं। फिर उसके बाद वस्त्र भी लैट्रिन वाले न हो, स्वच्छ हो, उनका अधिकतर लोग ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद जब वो पत्थर की मूर्तियों के आगे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अगर खड़े हैं तो इतना उनको ध्यान रहता है कि यहां अगर मैंने कोई ऐसा गंदा फालतू का विचार किया, भगवान मुझे देख रहा है, मेरे को बहुत सजा मिलेगी, मेरा पाप हो जाएगा। इस स्थान पर खड़े रहकर मुझे कोई भी विकल्प नहीं आना चाहिए, इतना भगत ध्यान देता है। हालांकि उसके सामने तो केवल पत्थर की मूर्तियां हैं, तो भी हम इतना ध्यान देते। तो आप सोचो, बाबा तो हमको सचमुच की ऐसी मूर्ति बना रहा है, प्रैक्टिकल देवी देवता बन रहे हैं, तो हमारे अंदर कितनी पवित्रता चाहिए, सोचो आप। तो वो हाईएस्ट स्टेज पवित्रता की, उसको अभी हमें समय कम है, उसके अंदर बनना है, वो स्टेज पर अपने को लाना है। उसके अंदर मनसा वाचा कर्मणा तीनों आ जाता है। वाचा में भी आप देखेंगे, अभी तक रोज मुरली में सुनते हैं, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, किसको कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं, दुखदाई शब्द नहीं बोलने हैं, नेगेटिव नहीं बोलना है, पर चिंतन नहीं करना है, रोज बाबा मुरली में सिखाते। अब तक कई बच्चे ऑलमोस्ट करते रहते हैं। तो आप सोचो, वो हाईएस्ट स्टेज पर आप कब आओगे? उतना भी सहन नहीं कर सकते। एक शब्द कोई ने बोल दिया, सहन नहीं होता, चार शब्द निकल जाते। वो एक मिसाल देते हैं कि एक संत के साथ एक व्यक्ति जा रहा था आश्रम तक, तो रास्ते में एक व्यक्ति था जो वो संत को गालियां देना चालू किया। वो जाता रहे, पीछे वो आता रहे, गाली देता रहे। उन संत के साथ जो व्यक्ति था उसको गुस्सा आ रहा था, अरे संत तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये कितना टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा है संत के लिए। संत अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था। आखिर वो व्यक्ति आधे पौने रास्ते तक आके कंटाल गया, थक गया और वापस गया। जब वो आश्रम तक पहुंचे तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, तो उस व्यक्ति ने संत को कहा, अरे वो आपको कितना गलत कह रहा था, कितनी गालियां दे रहा था, आप उनको एक शब्द भी नहीं बोला, आपको गुस्सा भी नहीं आया, मुझे उसका जवाब दो, मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ, कैसे आप कर सके। तो संत ने कहा, मैं करके दिखाता हूं। तो संत जो है, एक जोड़ी बहुत गंदा मैला बांस वाला एक जोड़ी कपड़ा लेके आया और उस व्यक्ति को कहा, तो मैंने ये कपड़े पहन लो, ये निकाल दो। उसने देखा बांस आने लगी, मैले, ऐसा कर दिया, नहीं नहीं ये मैं नहीं पहन सकता हूं, कितना गंदा है, कितनी बांस आ रही। संत ने कहा, मेरा जवाब है ये, तुम गंदा कपड़ा पहन नहीं सकते हो, फेंक दिया, मैंने भी उसकी गाली फेंक दिया, मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने मेरे लिए समझा ही नहीं, और ये उसके ऊपर प्यार आता है, रहम आता है, कल्याण की भावना पैदा होती है, बेचारा बेसमझ है। बाबा ने भी हमको यही सिखाया है कि अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो आप उस समय क्या करो, आप शुभ भावना रखो, मास्टर रहम दिल बनो। आज बाबा अगर मेरी आत्मा के 84 जन्म देखे, समझो मैं बाबा के आगे खड़ी हो गई, 63 जन्म मैंने बाबा को कितनी गालियां दी, कितने पाप किए, क्या मैं लायक हूं कि बाबा मुझे ऐसे ऐसे प्यार करे, उसको ही मैंने गालियां दी, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सब बना दिया। लेकिन बाबा ने क्या किया, फिर भी प्यार किया, पापों को एक बाजू रखा, भूलों को बाबा ने एक बाजू रखा, प्यार किया, समझाया। हम नहीं कर सकते, हमारा बाप कर रहा है। एक शब्द कोई बोलता है सारा मिर्ची लग जाती है, शरीर के अंदर आग पैदा हो जाती है, क्यों बोला ऐसा उसने, रहम नहीं आता, शुभ भावना नहीं आती। उसमें भी अगर बीके होगा तो कहेंगे कितना बड़ा ज्ञानी है, मेरे को आप ज्ञान दे रहे हो, पहले उसको तो दो, उसको भी तो ये सब समझ है। बाबा कहते वही तो समझना है, उसके पास वो समझ नहीं है उस समय, वो वश है, परवश आत्मा है। परवश आत्मा के लिए हम क्या कहें, कोई व्यक्ति में भूत आ गया तो हम क्या लड़ेंगे उस भूत के साथ, लड़ेंगे, साइड हो जाएंगे। तो बाबा कितना अच्छा सिखाता, लेकिन हमारे मुख से क्या नहीं निकलता है। मैंने देखा है ऑलमोस्ट अभी तक 90% से भी ऊपर बच्चे ऐसे आराम से गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, वैर की भावना पैदा करते हैं, टेढ़ा व्यवहार करते हैं, उनका इंप्रेशन डाउन करते हैं, उनकी भूलों को ढूंढते हैं। अभी तक चाहे बीके, मैं तो बीके की ज्यादा बात करती हूं, अज्ञानी तो है ही ऐसे, उनका तो काम ही है ये करना, लेकिन बाबा के बच्चों का ये काम नहीं है। ये सब अपवित्रता में आता है, तो आप मत समझो हमारी आत्मा शुद्ध बन गई, हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, कांदा लहसुन छोड़ दिया, किसी के घर का भी नहीं खाते हैं, घर का भी कई लोग खा लेते हैं। और उस समय पॉइंट क्या याद करते, बाबा ने बोला है ना, बाबा की याद में खा लो, भोजन को अपने बाबा की याद से शुद्ध बना दो। अरे ताकत है आपका, इतना योग है कि आप उस भोजन को चेंज कर सको। बाबा ने बोला है तोड़ निभाओ, नाराज मत करो उनको। कितनी अच्छी बातें याद करते हैं, गलत है, बिल्कुल टच नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। उसकी बहुत युक्तियां बाबा मुरली में बताते उनसे मुक्त होने के लिए, भले वो नाराज हो जाए इस बात में। आज अगर आपके घर में कोई व्रत रख के आया, उपवास रख के आया, आप उसको फोर्स करोगे, करोगे, बोलेंगे फोर्स करना मना, हमारा पाप है, उसका बिचारी का व्रत है, उपवास है, उसको ये चीज आज नहीं खानी है, तो हमारा तो व्रत उपवास है ही ना। व्रत उपवास वाले मजबूत रहते हैं, भाई दीदी आज हमारा उपवास है, आज हम नहीं खा सकते, तो ये व्रत उपवास क्यों नहीं रखते हो, कड़वा न बोलने का उपवास रखो। हम नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, प्याज लहसुन समझ के चलो उसको, किसको टॉन्टिंग करना, किसी के ऊपर चिढ़ना, मूड खराब करके चलना, ये सब जो है ना व्यसन है। आप मत सोचो हमारे में तो कोई व्यसन है ही नहीं, ना हम शराब पीते, ना जुआ करते, ना कुछ ऐसा करते, कितने सारे व्यसन पड़े हमारे अंदर, हमें इन व्यसनों से मुक्त होना है, तब जाके हमारी आत्मा पवित्र बनती है। तो मन में भी हम मन जीत नहीं बने, माया जीत नहीं बने, व्यर्थता हमारे पास सेकंड में आती है। और बाबा कहते एक व्यर्थ संकल्प आया, हजार बच्चे पैदा करता है वो। जैसे होता है ना काकरोच, होते हैं काकरोच को क्या बोलते, जुड़ल को, 100 बच्चे पैदा करता है। ऐसे व्यर्थ जो है ना वो हजार बच्चे पैदा करता है। इतना हमें ध्यान रखना पड़े, सेकंड में आ जाता है। तो मन को हम कब कैसे पवित्र बनाएंगे, और मन ही तो फाउंडेशन है। इसलिए अज्ञानी लोग बोलते मन नहीं लगता हमारा प्रभु में। अब हम भी यही बोले, बाबा क्या करें व्यर्थ आ जाता है। अरे ऐसे ही आ जाता है, आप घर में बैठे हो, आपका मेन गेट सब बंद है, लॉक पड़ा हुआ है, वैसे ही आ जाएगा कोई। आपने दरवाजा खोला तो ही आया ना चोर। ऐसे कैसे बोल देते आ गया, चाहते नहीं थे पर आ गया, घुस गया। नहीं, कंट्रोल भी तो हमको ही करना है। आजकल कितना ध्यान रखना पड़ता है, बेचने वाले आएंगे तो भी खोलते नहीं, डर लगता है आकर के मर्डर नहीं कर देवे, लूट के न जावे, खोलते ही नहीं। खोलते हो दरवाजे, देखा समय खराब है, तो इनसे क्यों नहीं डरते हो, ये जवाब दो मुझे। ये ऐसे गंदे गंदे विचार, व्यर्थ विचार, इनसे डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अभी सजा सामने कड़ी दिखती नहीं है ना। पर जो ये योग टूट रहा है, ये खुशी गायब हो रही है, नशा कम होता है, हम जल्दी से विजयी नहीं बनते हैं, गुण धारण नहीं होता है, ये सजा है, ये सजा है। इसको आप सहज मत समझो। और बाबा से हमारा योग टूटे, बाबा के बच्चे का, इससे कड़ी सजा बच्चे के लिए क्या हो सकती है बताओ? है कोई दूसरी सजा? भगवान से योग तोड़ देता है एक पाई पैसे का संकल्प, कितनी उसमें ताकत है, वो मेरे से जीत गया और मैं हार गई। ऐसे अपने को देखो, झांको, सुबह अमृत वेले से ही संकल्प करो कि मुझे आज नेगेटिव को टच ही नहीं करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, वो मांस मटन होता है ना, तो बाबा कहते हैं मांस मटन बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला और खाने वाला चारों पाप के भागी है। ये बाबा का नियम बना हुआ है, कायदे कर्मों का, चारों ही पाप के भागी। भले हम मांस मटन खाते नहीं है, पर पति को बच्चों को बना के देते, वो तो भी हम पापी है, हमें नहीं बना के देना है, मना है बिल्कुल। इसी प्रकार नेगेटिव भी सोचना, बोलना, कर्म करना, ये हम पाप के भागी बनते हैं। दूसरों से सुनना, हम चारों सभी पाप के भागी बनते, देखते हैं तो भी, सुनते हैं तो भी, बोलते हैं तो भी, सोचते हैं तो भी। और अभी समय बहुत नाजुक आ रहा है, कर्म भोगना है अभी जोर पकड़ रही है, इसीलिए संभालो, छोड़ेगी नहीं किसको, क्योंकि चुकतू करना है। जितना मधुर वाणी होगी, मीठा स्वभाव होगा, आपके पास रूहानी कशिश होगी, उतना प्रभु भी आपको प्यार करेगा, जन व्यक्ति भी आपको प्यार करेगा, आप खुद के भी प्रिय बनोगे और आपके अंदर गुण आते जाएंगे। एक मधुरता के पीछे अनेक गुण आते हैं, एक क्रोध के पीछे अनेक अवगुण आते हैं। हर गुण का कनेक्शन पवित्रता से है, हर अवगुण का कनेक्शन अपवित्रता से है, ये याद रखो, ये स्लोगन है। कोई भी अवगुण है उसका कनेक्शन है माना अपवित्रता, गुण है माना पवित्रता। और कर्म में अगर हम आ गए तो और हम सौगुणी सजा के भागी बनते हैं, क्योंकि कर्म और कर्म का फल ये नियति बनी हुई है ड्रामा में। इस नियति को मैं और आप बदल नहीं सकते, प्रभु भी नहीं। वो भी कहता है भाई मैं भी नहीं आता हूं इस बीच में, तुमने कर्म किया तुमको फल भोगना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहते एक बार छोटी कहानी थी कि शंकर पार्वती किधर घूमने गए नदी किनारे, देखा छोटे बच्चे है ना वो उसमें तैर रहे थे, स्विमिंग पूल था, तैर रहे थे। तो एक बच्चा था वो बहुत दुखी उदास, उन बच्चों को देख देख के दुखी हो रहा था। तो पार्वती ने शंकर को बोला कि वो बेचारा दुखी क्यों है, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे। शंकर ने कहा देखो ना उसके हाथ ही नहीं है, अब हाथ नहीं है तो वो तैरेगा कैसे ना, इसलिए वो दुखी है। तो पार्वती ने कहा मैं नहीं देख सकती, आप उसको अपनी शक्ति से हाथ दो, ये अच्छा नहीं है वो बेचारा दुखी रहे। शंकर ने बोला इस बात में अपने को जाना नहीं है, बोला नहीं मैं नहीं मानेंगी, आपको हाथ देना ही पड़ेगा उसको। जबरदस्ती किया तो चमत्कार से उसको हाथ दिए। 8 दिन के बाद जब वापस वो देखने आए वहां पर, तो देखा वो बच्चा मजे से तैर रहा था, 8 बच्चे दुखी होकर के उधर बैठे थे उदास। तो पार्वती को वंडर लगा, अरे ये क्या हो गया, तभी तो एक था, अभी ये सारे जो पहले तैर रहे थे सारे दुखी। तो शंकर को पूछा ऐसे क्यों, बोला वो भाई जो जिसको हाथ मिला सबको मार ताड़ के बाहर निकाल रहे, उसका स्वभाव ही ऐसा है, बस ऐसे धक्का मार मार के सबको निकाल दिया और बस मैं खुद ही तैरूंगा, इसलिए मैंने तुमको बोला किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करो। वो अपने कर्म का फल भोग रहा था। तो प्रभु भी नहीं आता है इसके अंदर, वो रास्ता बताता है अभी तुम क्या करो, तुम्हारे भी कर्म बहुत हो गए बच्चे, मुझे याद करो एक विधि है, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। और दूसरी विधि है अच्छे कर्म करो, माइनस करो, फिटूस करो, ये बाबा विधि बताता है। पर हमने अगर कर्म कर लिया उसका फल हमारे सामने आएगा आएगा आएगा। मैं कई बार बताई हूं क्लास में कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं तो अगले जन्म में सजा मिलती, अच्छे कर्म का भी फल मिलता है, ऐसे नहीं खराब कर्म की खाली बात कर रही हूं, अच्छे का भी मिलता है बुरे का भी मिलता है, पर मिलना जरूर है ये समझ करके रखो। चाहे आप भारत में अच्छा कर्म करके लंदन गए, चाहे आप भारत में बुरा कर्म करके अमेरिका गए, वहां भी आपको फल तो मिलना है, किधर छोड़ेगा नहीं आपको, वो ढूंढ लेगा आपको। वो मैं मिसाल देती हूं कई बार कि 100 गाय खड़ी है, 1 बछड़ा है, वो 100 गाय सब एक जैसी है, बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेगा, मेरी माँ कौन सी है। तो कर्म करता उसको कर्ता को पहचान लेता है कि वो भारत से लंदन अमेरिका किधर गया, पकड़ लेता है और उसको वो उसका फल मिलता है। कुछ छूटने वाले नहीं हम लोग, इसीलिए बाबा कहते कर्म करने के पहले क्या करो, कर्म के अंजाम को सोचो, परिणाम को सोचो, उसके आदमध्य अंत को सोचो, त्रिकालदर्शी बन करके सोचो, फिर कर्म करो। कहते हैं ना अगर बुरा किया कर्म वो भी आपके पास लौट के आएगा और जो अच्छा कर्म है ना वो आपके पास ही रहेगा। ये मेरा कहानी का एक स्लोगन है, बुरा कर्म आपके पास लौट के आएगा और अच्छा कर्म आपके पास ही रहेगा। सुनाऊं एक कहानी? कहानी बहुत हो गई अभी, पर उससे याददाश्त रहती है अपने को। एक बहन थी, उसका लड़का विदेश में था, अकेली रहती थी। उसका नियम था, एक रोटी रोज एक बनाती थी ना, एक रोटी खिड़की के पास रखती थी। एक फकीर का नियम था, टाइम पे आता था वो रोटी लेके जाता था, लेकिन रोटी लेने के पहले वो ये बोलता था कि बुरा कर्म करोगे तो वापस लौट के आपके पास आएगा, अच्छा कर्म करोगे तो आपके पास रहेगा। ऐसा बोलता था और रोटी लेके जाता था रोज डेली। एक दिन आखिर वो रोज सुन सुन के ना उसको हेमरिंग इरिटेशन हो गया माता को, ये क्या है, ये रोज यही बात बोलता रहता है, ठीक है आज है ना मैं उसके रोटी में जहर डाल देती हूं। तो पहले उसने एक रोटी में थोड़ा जहर डाला, रखा खिड़की पर थोड़ी देर के बाद है ना उसको कॉन्शियस खाने लगा, नहीं ये ठीक नहीं है, तो निकाल लिया वापस, अच्छी रोटी रख दिया। फकीर आया, अपना बोला जो उसको बोलना था, ये स्लोगन बोल करके रोटी लेके गया। अभी मां का जो बेटा विदेश रहता था वो आया देश में उस दिन, तो आते आते शाम को जब ही दरवाजा खटखटाया, उसने दरवाजा खोला, उसको मालूम नहीं था आने वाला है, बच्चे को देख के हैरान हो गई, लेकिन बच्चे की हालत बहुत खराब, ऐसा गिर रहा था, चक्कर आ रहा था उसको। बच्चा बैठा, बोला माँ ने बोला क्या हुआ बेटा, तो बच्चे ने बताया कि कैसे रास्ते में मेरी परिस्थिति रही, दो दिन से मैं भटक रहा हूं, मुझे खाने को नहीं मिला, मैं पूरा भूखा प्यासा मर रहा था, रास्ते में एक मुझे फकीर मिला तो उसने मेरी हालत देख के मुझे पूछा आपको क्या हो रहा है, तो मैंने बताया मैं दो दिन से कुछ खाया नहीं है। फकीर ने कहा मेरे पास एक रोटी है, मैं खिला सकता हूं। उसने मेरे को रोटी दी और लेकिन ये बोला माँ कि बुरा कर्म करोगे तो तुम्हारे पास लौट के आएगा, अच्छा करोगे तो तुम्हारे पास रहेगा। जब उसने एक रोटी दी खाई, मेरे में थोड़ी ताकत आई, इसलिए मैं जिंदा यहां पहुंचा। उस मां की आंख खुल गई कि देखो अगर आज मैं जहर वाली रोटी देती तो वो किसके पेट में जाती, मेरे बेटे के पेट में जाती, पर अच्छा किया, अच्छा कर्म उसके सामने आया। तो कर्म की गुह्यता समझना बहुत जरूरी है, जो बाबा समझाते हमको, कर्म अकर्म विकर्म की गति को महीनता से समझने की कोशिश करो। हमें कई बार कॉमन लगता है, ऐसा बोला तो क्या हो गया उसको, कोई मैंने खराब थोड़ी बोला, उसने भी तो मुझे बोला एक शब्द, मैंने भी बोल दिया ना, इसमें क्या हो गया। बहुत महीनता है, इस गुह्यता को महीनता को जो समझेगा उसका बेड़ा पार है। ये मुरली जो बाबा की है इसमें बाबा रोज कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। आप मुरली को रामायण की तरह हनुमान चालीसा की तरह से पढ़ेंगे, बाबा कहते मैं आत्मा हूं, आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो, दिन में 8 घंटा याद करना चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए। पोथी पढ़ करके रख दिया, मुरली पढ़ लिया मैंने तो उसे कुछ नहीं होगा। भगवान के मां वाक्य है, एक मुरली में इतनी ताकत है आप 16 कला संपूर्ण बन सकते हो एक मुरली से, क्योंकि भगवान के मां वाक्य, कॉमन व्यक्ति के नहीं है। इतनी ताकत है एक मुरली में, पर अगर हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए बाबा कहते दो तीन बार मुरली पढ़ो सुनो, उसका अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो और बाबा से बात करते रहो मुरली पढ़ते समय। मान लो एक पॉइंट आपने पढ़ लिया, फिर उसको पहले देखो, अच्छा बाबा ने जो ये बताया मेरे में ये कहां तक आया, अच्छा बाबा आपने ये बताया ना, बाबा मेरे में ना इतना है इतना बाकी है, अभी देखो आप उसके लिए क्या बोलते हो ना वो मैं करूंगी। फिर दूसरी पॉइंट पढ़ो, मैं ऐसे मुरली पढ़ती हूं, बाबा से मुरली पढ़ते पढ़ते मैं बहुत बातें करती हूं बाबा से, बहुत अपने लिए, तो वो मुरली पक्की हो जाती है हमको। तो मुरली का इतना महत्व, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्व मुरली, हर समस्याओं का समाधान बाबा की मुरली। आप लोगों ने अनुभव किए, सब सुनाते हैं कि अगर हम कोई भी कंफ्यूजिंग माइंड से होते हैं, उलझे हुए होते हैं, समस्याओं में पड़े रहते हैं, अगर बाबा की मुरली उठाई हमको पॉइंट मिल जाती है। दीदी है अनुभव ये, भले आपने वो मुरली पहले दो बार पढ़ भी ली हो, फिर पढ़ोगे फिर आपको कोई पॉइंट मिलेगा, है ऐसा? नहीं है तो फिर जिन्होंने नहीं किया वो ये अनुभव जरूर करो, तुरंत जवाब मिलता है। इतना मुरली के अंदर ताकत है, शक्ति है। इसीलिए कहते हैं ना सेंटर का संग, सेंटर पे जाके मुरली सुनना अति आवश्यक है। और इस प्रकार फिर हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध पवित्र बनती जाती है। रोज गंगा में स्नान तो करना पड़ता है ना, क्यों बोलते हैं गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं, क्यों बोलते हैं? प्रैक्टिकल है, झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं। पर कौन सा गंगा जल? ये ज्ञान का, उन्होंने फिर पानी का रख दिया। तो सब सेंटर्स जो है ना वहां गंगा बहती है जिसमें आपको नहाना है रेगुलर। ये शरीर का स्नान भी एक दिन नहीं करो तो कैसे लगेगा? और आत्मा का स्नान हम गुरुवार, कई बोलते दीदी हमें ना गुरुवार गुरुवार जाते हैं, अब खाना गुरुवार गुरुवार खाओ, स्नान गुरुवार गुरुवार करो, मुसलमानों की तरह जुम्मा जुम्मा चलेगा क्या? कितना अंदर लगता है, तकलीफ होती है। तो रोज हमको स्नान करना ये जरूरी है, तभी हमारी आत्मा के पाप धुलते हैं, तभी हमारी आत्मा जो है ना शुद्ध पवित्र बनती है। तो मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। अभी रक्षाबंधन भी आ रही है, आप सभी सेंटर्स पर जाते हो, जो भी आपकी कमी पेशी इधर मधुबन में कचरे के डब्बे में डाल के जाओ। कौन सा कचरे का डब्बा है बताओ? इधर इधर बाहर डब्बे पड़े वो नहीं, बाबा का रूम भी कचरे का डब्बा नहीं, बाबा ऐसा झोली फैलाता है, बच्चे मुझे दे दो, मेरी झोली फैली हुई है मुझे दे दो। अच्छे से मनन चिंतन करो, कल भी अमृत वेला है, और सारा कचरा बाबा को देके जाओ। आप बोलेंगे बाबा को कचरा कैसे देवे? दीदी बाबा को तो फल देना चाहिए, फूल देना चाहिए, बाबा को तो प्यार करना चाहिए। लेकिन बाबा को है ना कचरा दोगे तो ही प्यारे लगोगे, तो ही आप फूल बनोगे, तो ही आप रस भरा गुणवान फल बनोगे, और फिर बाबा पे बलि चढ़ोगे और वो बाबा को पसंद है। तो दुनिया भर का जो भी अपवित्रता का कीचड़ा है ना वो सब इधर सौंप के फेंक के डस्टबिन में डाल के जाओ। मधुबन पांडव भवन बहुत बड़ा डस्टबिन है, जितना जो डालेगा ना फिर भी डब्बा खाली रहेगा, जगह रहेगी उसमें। करोगे ऐसे? पॉसिबल है? हो सकता है? कितना आराम से धीरे से बोले, हाँ जी हाँ जी। अरे अच्छे से गर्व से, हाँ हाँ दीदी हम सब कचरा फेंके जाए, कचरा भी अच्छा लगता है ले जाना, वंडर तो ये। आप उस समय ये सोचो, समझो रास्ते में कचरे के डब्बे होते हैं ना, जहाँ सारे कचरे इकट्ठे होते, आप थोड़ी देर खड़े रहो ना। नहीं क्यों? अरे खड़े रहो ना, मजा उसका कुछ बोलो, हाँ बांस आती है, यूं यूं करके जाएंगे रास्ते से भी, और हमारे में भरा पड़ा है उसका क्या, तो फेंको ये सब कचरा, क्या करेंगे इसको रख के, जो दुख देता है, अशांत करता है, अपवित्र करता है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी थोड़े समय में अपनी कंप्लीट पवित्रता के मंजिल पे पहुंच जाओ, ताकि हम घर जाए ना, धर्मराज कहते ना हमको सलाम करे, हाँ भाई आप जाओ सलाम, हमारा स्वागत करे, रास्ता दे दे, हमको अटकावे नहीं। सुना?
सुख सागरी